नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। नमस्कार गिरीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका आपका।
और आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइन जान लेते हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और ग्रुप बी मुकाबले में थाईलैंड ने श्रीलंका को 94 रन का लक्ष्य दिया। अन्य मैच में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से हराया। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 900 करोड़ रूपये आवंटित। फ्रांसीसी अल्प्स 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम छठे और महिला टीम सातवें स्थान पर रही। बात क्रिकेट के मैदान की। महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात बाहर हो गए हैं। कल भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम 20 ओवर में सिर्फ 96 रन ही बना सकी। भारत की दीप्ति शर्मा ने 3 और राधा यादव तथा अरुंधति रेड्डी ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 48 गेंदों में 81 और हेमलता ने 47 रन बनाकर पहले विकेट की 122 रन की साझेदारी की। भारत ने 178 रन बनाए। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सेमीफाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार से खेले जाएंगे। बुबना जी, भारतीय टीम अपने ग्रुप में सभी मुकाबले जीतकर शीर्ष पर रहकर बड़ी शान के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है।
बिल्कुल, तीनों ही मुकाबले उन्होंने जीते और आप ये देखें कि ये जो नेपाल के खिलाफ मुकाबला था ये तो एक औपचारिकता थी और भारत ने एक तरफा मैच जीता, तो जो औपचारिकता रिवाइज सेमीफाइनल में जगह पक्की पहले थी, तो कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूजा वस्त्रकर को आराम दिया गया और उनकी जगह एस संजना और अनुरति रेड्डी को मौका मिला और स्मृति मंधाना ने कप्तानी की। तो बहुत कुछ बदलाव थे और बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव देखा है यहां प्रियंका। तो शेफाली वर्मा और हेमलता ने पारी की शुरुआत की। आमतौर पर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना करती हैं, तो यहां पर सफल किया गया देखने के लिए कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है और एक मौका भी था बेंच स्ट्रेंथ देखने का। तो नई जोड़ी ने नाप तौल कर काफी अच्छी शुरुआत दी, फिर बाद और उसके बाद पहले विकेट के लिए 122 रन जोड़े। हेमलता ने 68 सिर्फ वो 3 रन से वो चूक गई। वही शेफाली वर्मा जैसे आपने बताया कि 81 रन बनाए, तो और उसके बाद ताबड़तोड़ 28 रन बनाए जेमिमा रेड्रिक्स ने और 178 बना के 189 का जो टारगेट रखा। तो जो मौका दिया गया अनुरति रेड्डी को, उन्होंने भी गेंदबाजी से जो है 2 विकेट लिए, लेकिन वहीं दीप्ति शर्मा की काफी तारीफ करनी पड़ेगी। बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने, 13 रन देके 3 विकेट लटकाए और राधा यादव ने 12 रन देके 2 विकेट लिए। तो भारत ये मैच 82 रनों से जीता, लेकिन भारत ने इससे पहले पाकिस्तान को 7 विकेट से और यूएई को 78 रनों से हराया। तो आप ये देखिए जो मार्जिन है भारत का, चाहे विकेट के लिहाज से हो चाहे रनों के लिहाज से हो, तो भारत ने यहां एक तरफा अपना परचम लहराया है। तो अब जो आज जो मुकाबले चल रहे हैं, अभी जो सेमीफाइनल चल रहा है, ये सेमीफाइनल के लिए लड़ाई चल रही है, थाईलैंड ने 93-7 बनाए, अब श्रीलंका को ये मैच जीतना है। तो माना जा रहा है कि भारत का जो मुकाबला है सेमीफाइनल में परसों, वो बांग्लादेश से होगा 1-4। बांग्लादेश ऑलरेडी उनका औसत अच्छा है और श्रीलंका की जो टीम है वो माना जा सकता है कि अभी के जो आंकड़े देख के कि श्रीलंका की टीम भी अपराजित रहेगी और वो टॉप करेगी अपने टेबल पे।
अगर कल की भी एक मैच की एक हमने सबकी तारीफ की है, शेफाली वर्मा ने और हेमलता ने बहुत अच्छे बल्लेबाजी की, इसके अलावा हमारे जो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने, अरुंधति ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन एक नेपाल की सीता राणा थी, उनकी बात करें तो उनको कह सकते हो फाइटर ऑफ द मैच हैं, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट लिए, साथ ही रन चेज में ओपनर के तौर पर उतरी और 11वें ओवर तक एक छोर संभाले रखा और नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। नेपाल इस टूर्नामेंट में एक मैच जीत भी चुकी है।
देखिए नेपाल की जो टीम है, आप इंडिविजुअल की बात करें, मैं यहां पूरी टीम की बात करूंगा। अभी आप मेंस वर्ल्ड कप में भी अगर देखेंगे तो नेपाल की कई टीम जो है वहां पर हमारे भारतीय कोच भारतीय मूल के कोच मोंटी देसाई उनको कोचिंग दे रहे हैं
अच्छा।
नेपाल की मेन्स टीम को और वो काफी क्लोज आए और काफी क्लोज आने के बाद वो मैच हार गए तो वो अलग कहानी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेपाल में जो क्रिकेट है आने वाले समय में काफी अच्छा होगा। जैसे उनकी महिला टीम है पुरुष टीम है दोनों अच्छा कर रहे हैं और थोड़ा इनको और एक्सपोजर चाहिए और मैचेस चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि जो 8 टीम इस प्रतियोगिता में वुमेन्स एशिया कप में जो भाग ले रही हैं उनमें से 3 टीम भारत श्रीलंका और पाकिस्तान वो आने वाले विश्व कप में बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें 10 टीमें से 3 टीम है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एशिया कप जो तैयारी एक है विश्व कप की उसमें यहां पर ये बड़ी टीमों से भिड़ती है नेपाल की टीम तो इससे और अनुभव मिलेगा। और बायलेटरल अब अगर अच्छा और करना है इन खिलाड़ियों को और एक्सपोजर चाहिए तो दूसरे देशों से बायलेटरल और ज्यादा खेलने पड़ेंगे इनको।
और आपने जैसे बता ही दिया कि श्रीलंका और थाईलैंड के बीच मैच जारी है। थाईलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 94 रन का लक्ष्य दिया है। थाईलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 93 रन बनाए और ग्रुप बी के करने मैच में आज ही बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से हरा दिया। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मलेशिया की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 77 रन ही बना सकी। तो मतलब सब कुछ क्लियर पिक्चर ही है ग्रुप बी से कौन जाने वाला है।
बांग्लादेश ने हालांकि टॉस जीतकर जो 191 रन का जो विशाल स्कोर खड़ा किया उसमें मलेशिया की खराब फील्डिंग भी एक टैक्स रे है। हालांकि जो उनकी कप्तान है निकल सुल्ताना उन्होंने 62 अभिजीत बनाए और मुर्शिदा खातून ने 80। तो बांग्लादेश ने हालांकि शुरुआत में पहले 4 ओवर तो बहुत संभल के खेला 25 रन ही बनाए थे उसके बाद पावर प्ले जब तक खत्म हुआ तो 51 रन बनाए और इस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा यहां पर है कि जो अब जो मुकाबले होंगे परसों भारत को शायद पहला सेमीफाइनल खेलना दिन का मैच खेलना है और वहां पर आमतौर पर तय हो चुका है कि भारत बांग्लादेश से ही खेलेगी तो टॉस की भूमिका काफी अच्छी रहेगी यहां पर। हालांकि इतना मैं दबाव नहीं देख रहा हूं भारतीय टीम पर लेकिन दम्बुला की जो पिच है वो थोड़ी अब स्लो होती जा रही है तो पहले जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको एडवांटेज तो मिलेगा यहां पर।
चलिए देखते हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा हर उसमें भारी रहा है और उसने अपने फॉर्म के बलबूते ये दिखाया भी है प्रदर्शन करके दिखाया भी और ये भी हम संभावना जता सकते हैं कि फाइनल में शायद अब भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं।
हाँ लेकिन अब श्रीलंका जो होम टीम है उसको भी कम नहीं आ सकते क्योंकि वो होम टीम है और वो अपराजित है
वो भी अपराजित है अपने ग्रुप में। जी और आगे बढ़ते हैं। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442 करोड़ 32 लाख रुपए में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये राशि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपए के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपए अधिक है। इस साल पेरिस ओलंपिक समाप्त होने वाले हैं अगस्त में और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में अभी 2 साल का समय है तो ऐसे में खेलो इंडिया में भारी निवेश कर रही है सरकार काफी समय से ताकि जो देश की जो जमीनी स्तर की प्रतिभाएं हैं वो सामने आए और आ भी रही हैं।
बिल्कुल ग्रास रूट जो सबसे बड़ा एक आपका आप जैसे आप पौधा लगाते हैं और उसके बाद कुछ साल के बाद वो एक बड़ा पेड़ बन के आपको छाव देता है तो उसी तरह ग्रास रूट हमारे खिलाड़ी हैं जो चुन के अलग अलग जगह से आते हैं। तो 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी हमारे श्रोताओं को मालूम होगा। खेल मंत्रालय ने 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जोड़ा और उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स यहां तक कि पैरा एथलीट्स के लिए भी अब कई मौके हैं। तो आप सिर्फ ये ना देखें कि हम समर ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम पैरा ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और देश ने कई इस जगह पर जो खेलो इंडिया के जो स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस भी खोले गए 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहां से जो खिलाड़ी है उनका चयन होता है फिर वो आके रिप्रेजेंट करे। और अभी आप देखें जो ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स की लिस्ट में देखें तो अंशु मल्लिक मनु भाकर ये 2 प्रमुख नाम हैं जो मुझे मतलब खेलो इंडिया की ही ये एक उत्पत्ति है। तो आप स्पोर्ट बजट जिसमें 3,442.32 करोड़ का जो बजट है उसमें 900 करोड़ खेलो इंडिया का है और पिछले साल पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले आप देखें तो 20 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में जैसे आपने बताया कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स अभी 2 साल दूर है तो अगले वित्तीय वर्ष में और इजाफा देखेंगे और इसके अलावा भारत सरकार की और भी स्कीम है तो टॉप्स
है जी।
तो इन सबसे फिर उसके बाद फेडरेशन को अलग आवंटन होता है तो स्पोर्ट्स तत्काल सरकार के
प्राथमिकताओं में से एक है और प्रधानमंत्री खुद जो मेजर इवेंट्स में खुद शिरकत करते हैं और मतलब जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट करते हैं।
बिल्कुल
आगे बढ़े पेरिस ओलंपिक में भारत के एथलेटिक्स के बाद निशानेबाजी का दल सबसे बड़ा है और इस बार भेजी गई 21 सदस्यों की निशानेबाजी टीम देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी निशानेबाजी टीम है। ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजी का सफर अब तक कैसा रहा है आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
देश में वर्ष 1951 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI की स्थापना के बाद दो निशानेबाजों डॉ हरिहर बैनर्जी और सोनेर चौधरी ने 1952 के ओलंपिक खेलों में पहली बार निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। निशानेबाजी के शुरुआती दिग्गजों में से एक डॉ कर्णी सिंह थे जो 1960, 1964, 1968, 1972 और 1980 तक 5 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय निशानेबाज बने। देश के कुछ अन्य शुरुआती शूटिंग सितारे पृथ्वीपाल चटर्जी देवी सिंह और राय चौधरी थे। उस समय के युवा निशानेबाज जसपाल राणा और मनशेर सिंह ने भी 1996 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था लेकिन कोई भी भारतीय निशानेबाज फाइनल तक नहीं पहुंच सका। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में अंजलि भागवत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। शीर्ष निशानेबाजों में अपनी जगह बनाते हुए अंजलि ने देश के लिए नई संभावनाएं खोली। निशानेबाजी में भारत का पहला सटीक निशाना लगा 2004 के एथेंस ओलंपिक में जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुरुषों की डबल ट्रैप में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2008 पेचिंग ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल कर देश को भी किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत का आखिरी ओलंपिक पदक 2012 लंदन ओलंपिक में आया था जब विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। इस बार पेरिस ओलंपिक्स ने भारत की 21 सदस्यीय निशानेबाजी टीम देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी निशानेबाजी टीम है। मनु भाकर सिफत कौर सामरा ऐश्वर्य प्रताप तोमर और अनीश भानवाल पदक के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। आशा है पेरिस में हमारे निशानेबाजों के सटीक निशाने लगे और 8 साल का सूखा समाप्त हो। अतहर सईद स्पोर्ट्स कैन।
गिरीश जी पिछले 2 ओलंपिक्स में हम एक भी पदक नहीं जीत पाए हालांकि पिछली बार टोक्यो में भी हमने 15 निशानेबाजों की टीम भेजी थी और इस बार जैसे मनु भाकर आपने कहा कि खेलो इंडिया की ही उत्पत्ति है बहुत उम्मीदें हैं सिफत कौर मनु भाकर ऐश्वर्य प्रताप सिंह अनीश भानवाल से।
हाँ मनु भाकर तो खैर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल उसके अलावा मिक्स टीम का भी वो हिस्सा है तो वो और यहां तक कि उनके क्वालिफिकेशन की वजह से जो है ट्रैप शूटर को भी मौका मिला। तो आप जैसा कह रही थी कि हाँ ये बहुत ही बात खलती है कि 2012 में जब गगन नारंग और विजय कुमार उन्होंने जब जीता उसके बाद से काफी सूखा चल रहा है शूटिंग में तो मुझे लगता है कि अब जो शेवडी मिशन है गगन नारंग भी वहां पर खुद है और वो 4 बार ओलंपियन रह चुके हैं और 2012 में जीता है उन्होंने गगन और इस तरह अभिनव बिंद्रा अभी ओलंपिक ऑर्डर भी उनको प्रदान किया गया तो मुझे लगता है कि इस बार जैसे आपने नाम लिया तो और सबसे बड़ी बात है कि इन सब नाम के बाद मेरा जो रुझान जो मैं सोच रहा हूं उन एथलीट के बारे में उस शूटर्स के बारे में जो उन्होंने कोटा जीता और नहीं जा पाए
ट्रायल्स
की वजह से तो खैर ये होता है क्योंकि कोटा भारत को मिलता है खिलाड़ियों को नहीं मिलता लेकिन जो भारतीय दल है बहुत ही मजबूत दल है और मुझे लग रहा है कि ये इस बार तो कम से कम आप मेडल्स देखेंगे।
इसी उम्मीद के साथ हम आपको पल पल की खबर भी देते रहेंगे ओलंपिक्स की और अब जाते जाते कुछ अन्य खेल खबरों पर नजर डाल लें। फ्रांसीसी आल्प्स 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज एक घोषणा की। विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम 6ठे और महिला टीम 7वें स्थान पर रही और इसके अलावा भारत इस बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में होगा। यह आयोजन 2 से 9 नवंबर तक चलेगा। समय कह रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति ली जाए। गिरीश आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।